Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Shrivastav and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. Aaj ke khabron ke karyakram Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum hamesha ki tarah desh aur duniya ki chuni hui aarthik, karobari aur share bazaar se sambandhit khabrein lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार. थैंक यू.
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
Absolutely, Amrish. Starting with the headlines, domestic benchmark indices end in red. Sensex closes at 80,149. Nifty settles at 24,414. 21 crore rupees allocated for research and development in coal technology in 2024-25, says Union Minister of Coal and Mines G. Kishan Reddy. And rupee fall 1 paise to close 83.7 against the US dollar.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांक गिरावट के साथ बंद. सेंसेक्स 80,149 और निफ्टी 24,414 अंकों पर बंद हुआ. केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में कोयला प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरकर 83.70 रूपये पर बंद हुआ. और आज की पहली खबर, देश के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक आज एक दायरे में सीमित रहे और मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 280 अंक यानी 0.35% की गिरावट के साथ 80,149 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 66 अंक यानी 0.27% गिरकर 24,414 अंकों पर बंद हुआ. निफ्टी की 130 कंपनियां 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची, जबकि 14 में गिरावट दिखाई दी. बीएसई के व्यापक बाजार में मिडकैप सूचकांक 0.68% के लाभ में रहे, वहीं स्मॉल कैप में 1.91% की वृद्धि दर्ज की गई.
11 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top gainers today were Tech Mahindra and NTPC 2.7%, Tata Motors 2.6% and Sun Pharma 1%. Conversely, the major laggards were Bajaj Financial Service 2.4%, Axis Bank, Bajaj Finance and Hindustan Unilever 1.8% and Adani Ports 1.6%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors locked gains. The top gainers were oil and gas 1.7%, energy 1.6% and utilities 1.3%. Conversely, the major laggards were FMCG and financial services 0.2% and Bankex 1%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,007 companies, shares of 2,802 companies advanced, 1,094 declined and 111 remain unchanged.
और विदेशों में अमरीकी डॉलर में मजबूती और निवेशकों की सतर्कता के कारण रुपया 1 पैसा गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 83.70 रूपये पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया 83.69 रूपये पर खुला और अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान रूपये ने 83.68 रूपये के उच्चतम स्तर और 83.72 रूपये के निचले स्तर को छुआ।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन हर बजट स्पीच यस्टरडे proposed that the long-term capital gains tax on all financial assets, including equity, will increase to 12.25% from the current rate of 10%. The tax on short-term capital gains was increased from 15% to 20%. Additionally, the minister proposed to increase securities transaction tax, STT, from 0.01% to 0.02% for futures and options trading. We've got senior business journalist Prakash Chavla, sir, with us in today's show. Sir, the union budget, the first of the historic third term of the Modi government, the seventh in a row by Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. How do you see the Part B, or let's say the capital gains taxation that have been changed? Why has it been done? Has it been done to reduce volatility and give a clear signal that we want more stable markets?
Well, the purpose, stated purpose, is simplification of the tax regime. Simplification. And you set up the tax in a structure which is easy to understand, easy to use. That is the stated purpose of. Because what has happened is that they have reduced, and they have also tried to, in fact, they have already done it, that they have equated the long-term capital gain tax on property and brought it at par with long-term capital gain tax of the equity. So all the asset classes, different asset classes, for different asset classes, the long-term LTCG has been now fixed at 12.85%. And so this is one part of the simplification process. When it comes to volatility in the stock market is nothing new, and it will basically stock market will digest the changes. There is nothing to be concerned about it. There's whatever volatility, because generally it happens after the announcement is made, it takes time to sink in. And that's what has happened.
Prakash ji, jis tarah ke pravadhan kal humne budget mein dekhe, jo long term capital gains hain, short term capital gains, dono mein hi ब्याज दरों को बढ़ाया गया और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी बढ़ाया गया, तो क्या इसी का असर आपको लगता है कि बाजार पर हुआ, या बाजार इसको समाहित नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, और जिसकी वजह से हमें कल भी और आज भी गिरावट दिखाई दी?
देखिए, अगर आप देखें तो गिरावट बहुत ज्यादा नहीं हुई है, है ना
जी।
कल तो वॉलेटिलिटी है, मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। और क्या इसकी थोड़ी बैकड्रॉप आप देखिए, शेयर मार्केट ऑलरेडी अपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी भारतीय शेयर मार्केट वैल्यूएशन पे पॉइंट में काफी टॉप पे चल रही, तो इन्वेस्टर्स को अब कहीं ना कहीं लगना ऐसा तो नहीं कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा हुई, थोड़ी बहुत इसमें गिरने की संभावना है। वो तो पहले से ही चल रही थी, बजट आने से पहले से। और जहां तक ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स का सवाल है, ये भी ऐसा नहीं कि इट केम एज ए शॉक टाइप ऑफ अ थिंग। किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है एक तरह से मार्केट को ये कि जहन में डाल दिया गया था, सेबी, आरबीआई, इकोनॉमिक सर्वे सब में इंडिकेशन आ रहा था कि हम थोड़ी वॉलेटिलिटी जो खास तौर पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होती है उसको कम करना चाह रहे हैं
जी।
तो ये जो एसटीटी बढ़ाया है डेरिवेटिव्स पे, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक जो कैश मार्केट का ट्रेडिंग होती है उसका रेपेल का टाइप, उससे बड़ा ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ी। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि आरबीआई को चिंता होने लगी, सेबी को चिंता होने लगी, सरकार को भी चिंता होने लगी
जी।
तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको आपको देखना होगा, रेवेन्यू तो बढ़ेगा इससे, तो इसकी जो एक तरह से, और आज मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को सुना, वो कह रहे थे कि हमारा पर्पस ये भी है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान हटा के लॉन्ग टर्म में ले जाया जाए
जी,
तभी डिफरेंशियल है
जी
उनके टैक्स दरों।
तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से लगातार शेयर बाजार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था उसमें थोड़ी उसका थोड़ा रैशनलाइजेशन हो, थोड़ा उसको और तार्किक बनाया जाए और वैल्यूएशन इतना ना हो कि फिर उसको नियंत्रण से बाहर हो, ऐसा कुछ
नहीं। नहीं, सरकार की जो चिंता थी वो सरकार की, सेबी की, आरबीआई की, सबकी जो चिंता थी वो ज्यादा थी रिटेल पार्टिसिपेशन, टू मच एग्ज्यूबरेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं
जी,
वो एग्ज्यूबरेंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, जो एक जिसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है
जी।
बाकी मार्केट पर से अपने आप में मार्केट में कोई दिक्कत नहीं हो, तो मार्केट तो बड़ा अच्छा एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने वाली चीज है, और सरकार में कोई ऐसी सोच नहीं है
जी।
सरकार की सोच या कुछ चिंताएं या मार्केट रेगुलेटर की चिंताएं या आरबीआई की चिंताएं यही थी कि ऐसा तो नहीं कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो किसी उसमें फंस, क्योंकि सेबी की तो स्टडी ने बोला है कि 9 out of 10, 10 में से 9 आदमी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं उसमें घाटा सफर करके निकलते हैं
जी।
तो उस परिप्रेक्ष्य में
तो आपको क्या लगता है आने वाला जो दो दिन चार दिन हफ्ते भर तक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा बाजार से हाथ खींचे रहेंगे, अभी सोच समझ के फैसले करेंगे,
थोड़ा कॉशियस अप्रोच आ गई है पिछले अगर आप कल की ट्रेडिंग देखें, आज की ट्रेडिंग देखें, लेकिन जिसमें जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ विल मूव ऑन
जी,
तो मूव ऑन करेंगे, सिंक इन कर जाएगा और फिर नया कैलकुलेशन आ जाएगा टेबल पे, उसी हिसाब से करेंगे
जी। प्रकाश सर, हाउ डू यू सी द चेंज इन द एसटीटी फ्रॉम 0.01% टू 0.02% फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन? इज इट जस्ट फॉर द फैक्ट दैट दे विश टू रिड्यूस द रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स फ्रॉम ट्रेडिंग, और इज इट ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट everyone knows that India's markets are rising and they are rising continuously? So even the government wants that all the profits that are being made, even they should get a part of it in the form of taxes, which will again in turn benefit the economy. How do you see it?
I don't think that the revenue consideration, it could be a major consideration so far as the STT is concerned. When it comes to long-term capital gains tax on all the asset classes, well, who owns the asset classes? Generally, the better off, well off of the society owns the asset classes.
Absolutely.
Generally.
Ji.
So if you are, see, after all, what is the name of the tax? It's called capital gain. Well, you make a gain, you share with me. Then what is government asking you to do?
Yes.
I am giving you a framework, an environment, an ecosystem where you make a good gain. When you make a good gain, you share part of it, at least 12.5% you share with me. That's what the government is all telling you. But point is that is it the only consideration, the revenue? Revenue could be a consideration, but the other consideration when it comes specifically to STT, increase in STT for derivatives, there I, as I stated earlier to Ambarish ji, the purpose is to curb speculative activity so that retail investors by default do not burn their fingers.
Jee. Sir, another aspect of the SCT and the capital gains taxation, and everyone is talking about it, I'm sure all our listeners, be it Hindi or English or globally, who listen to this show with the Akashvani network, the benefit of indexation, as the Honourable Finance Minister has said, has been removed or changed, or let's say curtailed, which would have been given to the person having those capital gains. Could you please, for a layman, please explain what exactly is the indexation that happens with a little example, and how will it change the game in the coming years?
Well, the indexation issue, the long-term capital gains tax, was there, 20% was there for the properties, right? So the indexation was available. What it means is, if I buy a house supposing I had bought a house 20 years ago at X price, and after 20 years I am selling that house, so obviously my price today, so the capital gains will not be the difference between my purchase price and the sale price as per the regime which was previous to this budget.
Yes.
I am talking about that. So the capital gains would be calculated, my purchase price, my sale price, and some indexation to my purchase price, which means if I had bought a house for 14 lakh rupees 20 years ago and it is selling at 2 crores today, so the purchase price would not be 14 lakh rupees. It will be some index. What is indexation? Indexation means what is the value of 14 lakh rupees that was 20 years ago today. So because of inflation. So the inflation indexation takes place, used to take place, but then the rate of capital gains would be 20%. Now what has happened now? What has happened now is government has reduced the capital gains tax on property from 20% to 12.5%, but removed the indexation. Now what has that led to? Well, people are again getting their calculation now. Does it make a difference? Government says that it would not make much of a difference. Government says that it would rather lead to simplification, because calculating indexation also is a complicated task. You need to go to a CA, you know, need to go to a professional valuer. So at the end of the day, you know, it may not be much of a difference when it comes to paying taxes, capital gains tax, because rate has been slashed even if indexation benefit has been removed. This is what government says. It remains to be seen how it pans out.
So, abhi aapko kya lagta hai iska kuch asar realty sector par kis tarah ka dikhai padega, to ya gharon ki jo keemte jis pe kharidi aur bechi ja rahi hain is pe koi asar padega, jo bade realty jo vendors hain unke business pe kya kuch asar aapko dikhta hai, ya jo log makan khareedna chahte hain apne rehne ke liye un pe kya asar padega?
Do tarah ke log invest karte hain property market. एक जो अपने लिए यूज करता है, जिसको हम अंग्रेजी में एंड यूजर बोलते हैं, एक्चुअल यूजर बोलते हैं. मैंने कोई यंग प्रोफेशनल है, अपने लिए मकान खरीदा, लोन लेके ईएमआई बांध ली और मकान ले लिया, तो उसको तो फर्क पड़ना नहीं है, तो वो तो एक्चुअल यूजर है. दूसरा एक काफी डोमिनेंट क्लास है, अपने डिनोमिनेट है, खासकर बड़े शहरों में, और वो है इन्वेस्टर, जो अपने घर के अलावा और भी उसकी जो सरप्लस सेविंग्स है, वो सेविंग का जो पोर्टफोलियो बनाता है, वो कुछ पैसा शेयर मार्केट में डालता है, कुछ गोल्ड में डालता है, कुछ बैंक डिपॉजिट में डालता है, और कुछ सेकेंड हाउस में और इवन थर्ड हाउस में. मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, चौथे हाउस में भी डालते हैं.
जी, जी.
तो ये जो चार हाउसेज बना रखे हैं, तो इन चार हाउसेज में से कभी ना कभी तो ये बिकेंगे. तो जब भी बिकेंगे, तो सरकार का ये मानना है, भाई अब बिकेंगे, आपने अच्छा कैपिटल गेन बनाया, थोड़ा हमसे शेयर कर लीजिए. तो 12.5% तो शेयर कीजिए ना. तो आपने आपका जो बेसिक सवाल यह था कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट प्रॉपर्टी मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, तो जो तो इन्वेस्टर क्लास की तरह से डिमांड आ रही थी, उस पे फर्क होने की संभावना है, फर्क पड़ने की संभावना है, क्योंकि अब इन्वेस्टर सोचेगा भाई ये तो एक हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल यूजर एंड यूजर है उसको फर्क नहीं पड़ा.
जी, तो अच्छा है जो एंड यूजर है वो उसको सस्ते दरों पे कंपैरेटिवली मकान मिलने की संभावना बनेगी.
थोड़ी जैसे स्पेकुलेटिव एक्टिव थी ना उधर एसटीटी में, शेयर मार्केट में, तो जो स्पेकुलेटिव एक्टिव प्रॉपर्टी मार्केट में बिल्ड हो रही थी, वो थोड़ी सी उस पर लगाम लगे.
जी, और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल जान लेते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख दिखाई दिया. जापान में टोक्यो शेयर बाजार के निकेई में 1.12% की गिरावट दर्ज की गई. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.91% के नुकसान के साथ. दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.56% गिरा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.46% की कमजोरी देखी गई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.01% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोप के तीनों प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 1.03% के नुकसान में रहा, जर्मनी के डेक्स में 0.71% की कमजोरी देखी गई और लंदन का फुटसी 0.19% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार यूरोप के तीनों बाजारों में हमें गिरावट देखी जा रही है और एशिया में भी देखें तो ज्यादातर बाजार नीचे की तरफ ही थे आज।
वो एक्चुअली क्या हुआ है कि यूएस स्टॉक मार्केट में कल से जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके नतीजे आए हैं
जी।
तो नतीजे जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट या टेस्ला, इनके नतीजे जो हैं वो उम्मीद अनुसार नहीं आए, ऐसा वहां के इन्वेस्टर्स को लगता है
जी।
तो उसके चलते वहां पे थोड़ी दिक्कत हुई। यूएस फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे थोड़े डाउन है, कल भी मार्केट में डाउन है। तो टेक तो यूरोप जो के जो बाजार हैं वो भी थोड़े से कॉशियस हो गए हैं, उनकी नजर इस पे है कि भाई किस तरह से ये चल रही है। तो रेवेन्यू बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पूरे वर्ल्ड पे इनका इन्फ्लुएंस है और मार्केट डायनेमिक्स तो बदलते रहते हैं, तो उनकी नजर इस पे है और थोड़ा कॉशियस अप्रोच है और इसलिए थोड़ा, बट ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये बात सही है, अभी जो आज और कल की जो वहां पे गिरावट है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि जो टेक कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, नतीजे हैं, वो उतने अच्छे नहीं आए जितनी संभावना वहां के इन्वेस्टर्स लगा रहे थे और उस कॉन्टेक्स्ट में ये डिक्लाइन।
सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैव कंटिन्यूअसली बीन ऑन अ राइज विद इन इंडिया and as we see the domestic production or the domestic manufacturing has been the focus of the government. Now with the union budget 2024-25, doors have been opened for more FDI flows. Many places the customs duty has also been removed by the government. They are saying that we want to assist companies in growing and we want more funding from global companies or global investors. How do you see this for the markets and for the companies which have the potential to gain more, let's say, people who are ready to invest in them?
Well, if you see the budget, what is the broad indication or the signal from the budget? Signal from the budget, as far as the manufacturing is concerned. So they want domestic, naturally, because what has happened is, if you see the budget, a lot of focus has been given on increasing employment. Employment through skilling, and a very innovative way has been found to do the skilling. That means about over four crore youth have to be getting internship in top 500 companies, so that this so much is made out of skilling gap that we have, so that this skilling gap is filled. So that's the provision in the budget. And the internship will be available at a monthly stipend of rupees 500 or 5,000.
Yes, sir.
Right? Per month. Now this will happen, this will also help manufacturing. Because then number one, the skilling gap is filled. The other initiatives that you are referring to, reduction or slashing or sometime elimination of customs duty, what has happened is something called inverted duty structure.
Okay.
So the effort is now to remove the inverted duty structure. So that, what is inverted duty structure? When duty on raw material is more than the duty on finished goods, that's called inverted duty structure. So if you want domestic value addition, if you want India to become a global manufacturing hub, we would like global companies to come and invest here. So if the components have to be imported, then the duty on components must be lower than the finished goods. Only then there will be incentive for the global companies to set up and come and invest here to meet not only the domestic demand, but also create a surplus for the export market so that India becomes a global manufacturing hub. So that is the initiative. And rightly so.
Absolutely. Moving over to our news segment, we talk about the U.S. markets. All three U.S. major indices ended in red yesterday. NASDAQ slid 0.06%, Dow Jones Industrial Average fell 0.14%, and S&P 500 declined 0.16%. Moving from the U.S. market to the coal ministry, Union Minister of Coal and Mines, Sri G. Kishan Reddy, in a written reply in the Lok Sabha today, said that after studies, it has been established that 5% to 10% of biomass can be safely co-fired with coal in thermal power plants without any adverse impact on the thermal power plants. Further, the minister's reply added that the Ministry of New and Renewable Energy is implementing a renewable energy research and technology development program through various research institutions and industry to develop indigenous technologies and manufacturing for widespread applications of new and renewable energy in efficient and cost-effective manner. It provides up to 100% financial support to government or non-profit research organizations and up to 70% to industry, startups, private institutes, entrepreneurs and manufacturing units. On research and development in coal and technology, the reply revealed that during 2023-24, 18 crore rupees was allocated for research and development under the central scheme. Further, during 2024-25, 21 crore rupees has been allocated under the scheme. Prakash, sir, the government is continuously trying to put more money, as we saw that from 18 they've come up to 21 crore for research and development, and not just in the coal sector. Research and development is actually being the focus of the government because they wish to enhance not just the innovation in various industries, but also the yield of various industries, be it agricultural exports, be it defense, be it any other sector. How much of a benefit will this be, especially for the startups which are, as I say, week by week turning into unicorns and giving us great results?
Well, what has happened is that this particular aspect of spending more in coal technology has to be seen in the context of energy security. And this budget has given a huge focus on ensuring India's energy security. So the energy security has to be having various components, including the green energy, and not only green energy, but also the traditional thermal plants.
Yes, sir.
How do you improve efficiency of thermal plants? Because India still depends largely on thermal plants. A bulk of our energy requirement is met through thermal plants.
So none of the investors need to worry suddenly that overnight we will just transform.
No, there's a transition. Proper roadmap has been done. There is no. That's what energy transition is all about.
اور چلتے ہیں صرافہ بازار کا حال جان لیتے ہیں. صرافہ بازار میں سونا آج بڑھت کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا. سماچار تیار کیے جانے تک بھارت میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 0.74% بڑھ کر 69,360 روپے پرتی 10 گرام کے استر پر درج کی گئی. وہیں چاندی کا مولیہ 0.6% بڑھ کر 85,650 روپے پرتی کلو گرام کے استر پر رہا.
Brent and WTI crude trading more than 1% up in the global crude market today. Brent crude increased by 1% to $81.88 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI is up by 1.3% to $77.98 per barrel when reports last came in.
प्रकाश जी, एक आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे. सोने का मूल्य जिस तरह से बढ़ा तो कल जो थोड़ा ड्यूटी कम की गई उसका कुछ असर आपको दिखाई दे रहा है?
ड्यूटी थोड़ी नहीं, काफी कम हुई. ड्यूटी 15% से 6% कम
हुई.
और इमेजिन कीजिए, हाई वैल्यू आइटम है, सोने जैसी चीज है, सोना है आफ्टर ऑल, छोटी मोटी चीज थोड़ी है. तो सोने पे जब है उसमें ड्यूटी काफी कम हुई, उसका असर ज्वेलरी भी फर है. ज्वेलरी के प्राइसेस कम होंगे, डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. बहुत बढ़िया चीज की है.
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end in red. Sensex closes at 80,149. Nifty settles at 24,414. 21 crore rupees allocated for research and development in coal technology in 2024-25, says Union Minister of Coal and Mines G. Kishan Reddy. And rupee fall 1 paise to close 83.7 against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
Market Mantra.